वो ये स्ताजी रूना का बिल आदाब, और वो अजाब की जल्दी मचाते हैं आपसे, कहते हैं कब आएगा अजाब, मता हाजल वाद इन कुंतुम सौदकीन, कब आएगा वादे का वक्त, कब होगा वो वादा पूरा। कब कहते थे? इसलिए कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाते थे ना कि तुम ये दावत को कबूल कर लो, पर नहीं करोगे तो तुम्हारे पर अजाब आ जाएगा, इंतजार करते थे। तो वो आगे से कहते थे फिर ले आओ अजाब, ले आओ ना अजाब, क्यों नहीं लाते, आ क्यों नहीं रहा हमारे ऊपर अजाब, हम तो इतना जुल्म कर रहे हैं, हम तो इतना मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं, हम इतनी इनको सजाएं दे रहे हैं, हम इतनी मुखालफत कर रहे हैं इस पैगाम की, आता तो है नहीं अजाब, ले आओ फिर। अब देख लें उसकी अकल को क्या कहना, जिसको अगर कोई कहे भाई तुम्हें सजा मिल जाएगी तो वो कहे ले आओ सजा ना, किधर है सजा, हालांकि ये जानते नहीं है। अल्लाह ताला तो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, यानी ये हमारी जैसी बातें नहीं है कि भाई हम तो बातें करते हैं ना, उसके बाद बच्चे को भी कहेंगे अब मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगी ये कर दूंगी, उसके बाद करना कुछ भी नहीं होता, मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी उसके बाद ले जाना नहीं होता, बातें करते हैं लेकिन फिर वो चीज हम पूरी नहीं करते। तो अल्लाह ताला की बातें नहीं है, उनको नहीं पता कि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कभी नहीं करता। हाँ मगर एक बात है, उसकी कुदरत और चीज है और उसकी सुन्नत और चीज है। कुदरत उसकी ये है कि मसलन आप देख लें, या सुन्नत, पहले सुन्नत को देख लेते हैं। सुन्नत उसकी ये है कि आप देखें आग जलाती है तो वो जलाती है, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, उसका तरीका है। और उसकी कुदरत ये है कि किसी दिन कोई आग जलाए और वो ठंडी हो, तो ये उसकी सुन्नत है कि वो हमेशा हरारत पैदा करेगी, लेकिन उसकी कुदरत ये है कि जब चाहे आग को ठंडी कर दे, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कर दे, ये उसकी कुदरत है। उसकी कुदरत है कि ख्वाह कोई अगर अभी बोले, अभी कोई लफ्ज मुंह से निकाले और वो उसकी जुबान उसी वक्त खींच ले, ये कुदरत है उसकी। मगर उसकी सुन्नत ये नहीं है, उसकी सुन्नत ये कि वो मोहलत दे मोहलत दे मोहलत दे और फौरी ना पकड़े, समझ आई बात। तो अल्लाह की कुदरत है कि वो इसी वक्त अजाब ले आए, जब ये कह रहे हैं जल्दी लाओ ना अजाब जल्दी लाओ, ऐसा नहीं कि अल्लाह ला नहीं सकता, चाहे तो अभी पकड़ ले, चाहे तो अभी आसमान को गिरा दे, चाहे तो अभी इनकी बस्तियों को उलट दे, फिर वो क्यों नहीं ऐसे करता, इसलिए कि उसकी सुन्नत कुछ और है कि वो मोहलत देता है। और फिर दूसरी ये बात है, वह इन यौमन आइंदा रब्बी का अल्फी सनत मिम्मा ताउदून, अल्लाह के पास एक दिन, ये तुम्हारे तुम्हारी जो गिनती है ना, मिम्मा ताउदून जो तुम्हारी गिनती है उसके 1,000 साल के बराबर है, यानी तुम्हारे 1,000 ईयर्स इस दुनिया में गुजरते हैं तो अल्लाह का एक दिन होता है। अब आप सोचते हैं ना उसको क्यों नहीं सजा मिल रही, हम भी तो जल्दी करते हैं ना अजाब की, हम कहते हैं हाय फलां इतना बिगड़ा हुआ, फलां ऐसे कर रहा है, समझ नहीं आती अल्लाह उसको क्यों नहीं पकड़। अब ये आपके एतराज करने के या आपकी बातें बनाने की अलग बात है, कोई आपके कहने पे तो नहीं अल्लाह ने पकड़ना ना, अल्लाह ताला की अपनी सुन्नत है, उसका अपना तरीका है। और उसके हाँ एक दिन, आपके 1,000 साल गुजरते हैं तो वहां पर एक दिन है, तो इसका मतलब अगर अल्लाह ताला किसी को 1 घंटे की भी मोहलत देता है तो 80 साल हो गए ना, तकरीबन 80 साल हो गए ना। अगर अल्लाह ताला आधे दिन की भी किसी को मोहलत देता है जो उसके पास आधा दिन है, तो 500 साल तो मोहलत दे दी उसको, और ईसा अलैहि सलाम को गुजरे हुए भी तो सिर्फ 2 दिन हुआ, ठीक है ना, इतना ही है ना। तो हम ये जल्दी करते हैं, हम चाहते हैं अजाब आ जाए बुरों पर, और वो लोग भी जल्दी करते थे, क्यों नहीं अजाब आता, क्यों नहीं अजाब आता, तो ये इसकी वजह है। दूसरी इसकी बात ये है कि अल्लाह ताला कि हाँ एक दिन और 1,000 साल में कोई फर्क नहीं, उसको कौन सा कोई माजी हाल मुस्तकबिल की कोई वक्त की तकसीम है या वक्त या घंटे या इस तरह, उसके लिए सब बराबर है। हाँ तुम इस खुशफहमी में ना रहना कि अगर अजाब नहीं आ रहा तो पता नहीं नहीं आएगा। और एक और इसका माना तीसरा जो है वो ये है कि बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसका ताल्लुक कयामत के साथ है, कि एक दिन आएगा जिसका वादा पूरा होगा, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, और उसके हाँ वो जो एक दिन है ना, वो एक दिन कौन सा, कयामत का दिन। वो 1,000 जो तुम्हारे साल गुजरते हैं उसके बराबर वो एक दिन होगा। और सूरह मारिज में 50,000 साल का जिक्र है, और बाज कहते हैं कि काफरों को लगेगा 50,000 साल का, बाज कहते हैं नहीं वो दिन ही 50,000 साल का होगा। तो यानी इतना लंबा वो एक दिन है, शायद उसकी शिद्दत और हौलनाकी की वजह से वो इतना लग रहा हो कि किसी को 1,000 का लगे, किसी को 50,000 साल का लगे, या वो है ही इतना लंबा दिन, वल्लाहु आलम। मगर यहाँ पे बताया गया कि ये नबी का काम नहीं है कि वो अजाब की टाइम और डेट बताए, और ना ही किसी और इंसान का काम है। जब नबी का काम नहीं, तो मेरा और आपका कहाँ से काम हो गया कि हम ये सोचें कि अब तो इसको सजा होनी चाहिए, अल्लाह क्यों नहीं इसको पकड़ता। हमारी ये मिजाल नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसे इतराज करें, क्यों अल्लाह इसको सजा नहीं दे रहा, क्यों अल्लाह ने इसको ढील दी है, अल्लाह की मर्जी। और हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कब किसको सजा मिलनी चाहिए। अब देख लेंगे फिरौन ने कितने ही बच्चों को जिबा कर छोड़ा, वो पहला बच्चा ही जिबा कर देता तो उस वक्त ही उसके ऊपर अजाब टूट पड़ता, लेकिन अल्लाह ताला ने एक वक्त रखा था ना। पता नहीं हजारों लाखों बच्चे कुर्बान हो गए तब जाके वो गर्क हुआ। तो मेरे आपके जैसे तो वहां पे होते तो दूसरे दिन ही कहते कि कहाँ अल्लाह है, और पता नहीं क्या हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, और फिर अल्लाह क्यों नहीं पकड़ता। ये ना हमारे ईमान की कमजोरी होती है कि हम ऐसे करें, तो कभी ऐसी बात ना करें, अल्लाह ताला को बेहतर मालूम है। आप दूसरी तरफ देखिए मुसलमानों के लिए इसमें कितनी तसल्ली है ना, कि वो भी ये देख लें कि इन लोगों को अल्लाह जरूर पकड़ेगा। अगर मुसलमानों को लग रहा था कि ये इनकी पकड़ क्यों नहीं आ रही, वो बाज दफा इतना जुल्म होता था, इतना टॉर्चर होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहते थे मता नसरुल्लाह, अल्लाह के नबी कब आएगी अल्लाह की मदद। हजरत अम्मार और उनकी फैमिली को जब इतना टॉर्चर किया जाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरते थे तो वो पुकार उठते थे, या रसूलल्लाह क्या हम सच्चे नहीं है, कब आएगी अल्लाह की मदद। इतना टॉर्चर उन पे होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते थे तुम जल्दी कर रहे हो, तुमसे पहले तो कौमें गुजरी हैं उनके ऊपर इससे भी ज्यादा मुश्किल हालात आए, तुम जल्दी कर रहे हो। उनके ऊपर तो लोहे की कंघियां चला दी गई उनके जिस्मों में, उनके सरों के ऊपर आरे रख के और उनके सरों को चीर दिया गया बीच में से, तुम जल्दी कर रहे हो। तो हम नहीं जानते, अल्लाह ताला ने जो वक्त लिखा हुआ है रखा हुआ है वो बेहतर जानते हैं। वकई मिन करियतिन अमलई तो लहा वही अजालिमा, तुम देखिए वही जो मैं आपको बात कह रही थी कि कितनी बस्तियां मैंने ढील दी उनको और वो जालिम थी। सुम्मा अखज तुहा, फिर आखिर सुम्मा जो होता है ना तराखी के लिए होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, फा जो होता है वो फौरन चीज के होने जो, सुम्मा फिर ऐसा हुआ यानी कुछ टाइम गुजरने के बाद, सुम्मा अखज तुहा फिर मैंने पकड़ लिया उनको। अल्लाह ताला ढील देता है, लेकिन उसकी ढील को कोई ये ना समझे कि मुझे छुट्टी मिल गई है, मोहलत देता है ताकि जालिम भी तौबा कर ले। फिर जालिम जिस दिन पकड़ा जाएगा वो कह नहीं सकेगा अल्लाह अगर तू मुझे मोहलत देता तो मैं भी ठीक हो जाता, अल्लाह मुझे कुछ टाइम तो देना था संभलने का। अल्लाह ताला इतना टाइम दे देता है कि फिर इंसान जो है ना कोई एक्सक्यूज ना ला सके, इतनी मोहलत इंसान को देता है। जैसे हदीस में आता है जिसकी 60 ईयर्स की जिसको जिंदगी मिल गई तो अल्लाह ताला कि हाँ उसके एक्सक्यूजेस खत्म हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको इनफ टाइम दे दिया था। अगर सोचना होता, समझना होता, गफलत से निकलना होता, अगर कोई अपनी आखरत के लिए कुछ बनाना होता तो समझ आ जानी थी तब तक, जिसको उस वक्त भी ना समझ आई तो फिर उसका एक्सक्यूज खत्म हो गया, वो कुछ कह नहीं सकेगा अल्लाह मुझे अगर मोहलत मिलती तो मैं भी कुछ कर लेती। वही इलैहि अलमसीर, और आना तो हमारी तरफ ही है ना, पलटना तो मेरी तरफ ही है। जितना भी जुल्म कोई कर ले फिर उसके बाद आखिर तो एंड किधर है, अल्लाह के पास जाना, मौत की शक्ल में या कयामत आ जाएगी तो भी। तो अल्लाह ताला का ये कानून देखिए, दोनों बातें आपको समझ आ गई ना, कि जब भी वो जहन के अंदर ये बात आए क्यों नहीं इनको सजा मिल जाती, तो एक बात याद रखिएगा अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कभी नहीं करता। और कोई जालिम है तो अल्लाह ताला जरूर पकड़ेगा, मगर एक तो नंबर वन, अल्लाह के हाँ एक दिन हमारे 1000 साल के बराबर है, तो वहां पे तो कोई वक्त गुजरा भी नहीं होता, हमारे 1000 साल गुजर जाते। और दूसरे अल्लाह ताला मोहलत देता है, ढील देता है, जालिम को ढील देता है। कुल या अय्युहन नासु इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन, कह दीजिए नबी आप लोगों से, कह दे सारी इंसानियत से, सब लोगों से, सिर्फ ईमान वालों से नहीं, सब इंसानियत से, मैं बेशक मैं और कुछ नहीं, इन्नमा ना कलमा हसर, मैं और कुछ नहीं हूं, मगर मैं तो वार्निंग देने वाला हूँ खुल्लम खुल्ला। यानी मेरा काम ये नहीं कि मैं तुम्हें ये बताऊं अजी जी अब अजाब आ रहा है, अब आ रहा है, ये डेट को आ रहा है, इस टाइम पे आ जाएगा, नहीं, मेरा काम सिर्फ वार्निंग दे देना है, तुम्हें बात पहुंचा देना है कि देखो अगर तुम ऐसे करोगे तो ये अंजाम है। फल्लदीना आमनू वामिलु सालिहाति लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, तो जो लोग ईमान लाए और उन्होंने साले अमल के साथ जिंदगी गुजारी, नेकियों में जिंदगी गुजारी, एक जिंदगी होती नेकियों वाली, अमले साले वाली जिंदगी, कभी कभी इंसान कहीं भूल चूक हो जाए, कहीं गिर जाए, कहीं कोई गुनाह हो जाए, कोई जज्बात में आके कोई चीज हो गई, कभी किसी वक्त किसी मजलिस में बैठे कोई ऐसा काम हो गया, इंसान तौबा कर ले, अल्लाह ताला माफ करने वाला है, लेकिन अपनी रविश, अपनी जिंदगी का एक जो यानी अपना एक लाइफ स्टाइल है ना, वो अल्लाह की नाफरमानी वाला नहीं होना चाहिए, वो इंसान का वो जो साले अमल वाला हो। कभी कभार गिर जाना, कभी कभार भूल चूक हो जाना, वो तो इंसान है तो इंसान से होगी, कभी गुनाह भी हो जाता है, कभी अल्लाह की नाफरमानी की, लेकिन इसको अपनी एक जिंदगी का हिस्सा ना बनाए, कि एक लाइफ स्टाइल ना बनाए उसको, बल्कि साले अमल वाली जिंदगी जिन्होंने गुजारी, फिर जब वो तौबा करते हैं उनसे भूल चूक होती है तो उनके लिए बख्शिश भी है, और उनके लिए रिस्क वो है जो इज्जत वाला रिस्क है, अल्लाह ताला इज्जतों वाला रिस्क, वो कौन सा रिस्क है, जन्नत का रिस्क। और उस इससे उलट वो लोग हैं वल्लजीना सआउ फी आयातिना, और वो लोग जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं हमारी आयात में, किस चीज की, ये नहीं कि उनको आगे पहुंचाने की, उनको आगे फैलाने की, और अल्लाह के दीन की खिदमत की जैसे हमने अभी बात की, बल्कि वो किस लिए, मुआजिज़ीना, आजिज करने वाले, कि हम अल्लाह की आयात को नीचा दिखाएं, हरा दें, आजिज कर दें, अल्लाह ताला की आयात के मुकाबले में कोशिशें करते हैं, अगेंस्ट एंटी चलते हैं, या हम इसको किसी तरह गलत साबित करें, या हम इनको किसी तरह बताएं कि ये सही नहीं है बात, या ये आज के वक्त में तो बिल्कुल ही नहीं सही। अल्लाह की आयात के आगे ना दो ही रवैये होते हैं, या तो इंसान अपने आप को झुका देता है, कहता है समय ना वाताना, फौरन सर झुका दी, बस अल्लाह ताला ने जो फरमाया ठीक है, हमारे मेरी अकल में नहीं समझ आती कोई बात नहीं, मुझे नहीं इससे फर्क पड़ता, बस अल्लाह ताला ने फरमा दिया बस ठीक। दूसरा रवैया, बस इधर उधर के दलाइल लाना शुरू कर देना, नहीं जी वो तो ये कहता है, फलाने ने तो ये कहा है, और नहीं ये तो सही है ही नहीं है बात, नहीं जी ये कैसे हो सकता है, मुझे तो सही नहीं लगती वैसे, वैसे भी मेरी तो नहीं समझ में आती ये बात, ये एक तरह से एतराज की फॉर्म में ये कहना, और साइंस तो आज ये कह रही है ना जी, इंसान तो चांद पे पहुंच गया और आप ये बातें कह रहे हैं, इस तरह से जो अल्लाह की आयात का जवाब देते, और पता होता नहीं है कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, क्या इसकी बैकग्राउंड, क्या इसकी तशरीह है, क्या, बस उनको कोई बात नहीं पसंद आती तो आगे से इस तरह, नॉलेज कुछ भी नहीं है, तो कुरान को कौन हरा सकता है फिर, कुरान को तो कोई नहीं हरा सकता, फिर ऐसे लोगों का अंजाम क्या है, उलाइका असहाबुल जहीम, ये लोग जहन्नमी हैं, जो कुरान की आयत के मुकाबले करने के लिए खड़े हो जाए ना वो जहन्नमी है, तो ये बहुत सीरियस मामला है, कुरान की आयत के ऊपर आपसे अमल ना हो सके तो अल्लाह ताला से अमल मांगिए, ए अल्लाह ये पढ़ा है ना मुझसे अमल भी करा देना और अमल आसान कर देना, अगर कभी ये ना करें कि यहां से वहां से चीजें लेकर आए और बहसें करने लगें या मजाक उड़ाने लगें, या इसको नीचा दिखाने के लिए अपनी इंटेलेक्ट यूज कर रहे हैं, जी मैं तो ये समझती हूँ, मैं तो ऐसे करती हूँ, अपने अकल दौड़ा रहे हैं और उसके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। या जो जो लोग इस इन आयात का के ऊपर अमल करने वाले हैं उनके ऊपर तान कर रहे हैं। तो ये सारी मुकाबले हैं अल्लाह की आयात के साथ। अल्लाह की आयात से तो जो टकरा गया वो पाश पाश हो जाएगा, वो नहीं बचेगा। ये उनकी बात नहीं हो रही जो कुफर करते हैं, ये उनकी बात हो रही जो मुकाबले करते हैं अल्लाह की आयतों के साथ। और मुकाबले बड़े तरीकों से होते हैं लोगों के, इनमें से शोशे निकालते हैं, भाई हंसते हैं फिर उनके ऊपर, कभी इनमें शकूको शुभात पैदा करते हैं, ये कैसे, ये कैसी बात हो गई। और जो लोग अपने दीन के खुद समझ नहीं रखते वो फिर इनके पीछे लग जाते हैं। याद रखिए ऐसे लोग भी इस दुनिया में आपको मिलेंगे। उनकी सारी सही किस लिए, उनकी सही बिल्कुल ही ऑपोजिट चल रहे हैं वो। कुछ लोग सही कर रहे हैं ना इस इन आयात को आगे पहुंचाने के लिए, कुछ सही कर रहे हैं इनका मुकाबले के लिए। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। कभी असातीरुल अव्वलीन कहते हैं, पिछलों की कहानियां हैं। लो जी हमने तो कुरान पढ़ा। मैं सोचती हूँ पहले जमाने के लोग तो ऐसे कहते थे, क्या कहें लोगों को जो आज भी बाज कहते हैं हमने तो इसमें पढ़ा, हमें तो कुछ नहीं समझ आते, बस यही है स्टोरीज ही हैं। तो आप इनको नीचा दिखा रहे हो, अल्लाह के कुरान की आयात को नीचा दिखाना, कि यानी हम तो इतने बड़ी चीज है ना, हम इतने पढ़े लिखे और सब समझदार हैं, तो ये हमारे सामने क्या, इस तरह की बात। वमा अरसलना मिन कबलिका मिन रसूलिन वला नबीयिन, और नहीं भेजा हमने आपसे पहले भी किसी रसूल को और ना किसी नबी को, इल्ला मगर इदा तमन्ना, जब उस वो तमन्ना करता है, अल्क शैतानु फी उम्नियतिही, तो शैतान डाल देता है उसकी तमन्ना में। वो जब तमन्ना करता है तो शैतान उसकी तमन्ना के अंदर कुछ रखना डाल देता है। अब इस आयत को जरा सा समझ लीजिए। पहले तमन्ना का मतलब क्या है? तमन्ना एक वैसे तमन्ना होती है, आरजू करना, विश। और दूसरा माना इसका है तिलावत करना, पढ़ना। ठीक है, तो पहले माने के मुताबिक देखते हैं कि जब कोई भी पिछले जितने भी नबी आए, जब उनकी कोई तमन्ना होती थी, कोई ख्वाहिश वो करते थे, उनकी ख्वाहिश क्या होती थी कि लोगों को जहन्नुम से बचाएं, तो शैतान उनकी तमन्ना के अंदर रखना डालता था। तो शैतान की तमन्ना क्या होती थी कि लोगों को आग की तरफ लेकर जाए, लिहाजा लोगों को वो जहन्नुम में ले जाना चाहता है जो नबी की तमन्ना है वो जहन्नुम से बचाने की, तो वो रुकावटें डालता था नबी की तमन्ना में। ठीक है, एक तो ये माना हो गया। दूसरा माना तिलावत का, अगर सोचें तो तिलावत का करेंगे तो जब नबी वही को तिलावत करता तो शैतान उसमें रुकावट डालता, मुदाखलत करता, जब भी किसी नबी के पास वही आती थी, यानी लोगों को उसके फहम में कंफ्यूज कर देता, या शकुको शुभात। नबी एक वही की तिलावत कर रहा है और लोग कुछ और समझ रहे हैं। इसकी एक मिसाल जो तफसीरों में लिखी हुई है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में सूरह नजम की तिलावत की थी तो बास काफिर सरदार भी सज्दे में गिर गए, तो शैतान ने उनको ऐसा ऐसी बात उनके कानों के अंदर डाली कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बुतों के बारे में कुछ कुछ बात उनकी फेवर में कह रहे हैं, तो वो सज्दे में गिर गए। हालांकि ये कुरान में से नहीं था, तो ये बास तफसीरों में ये लिखा हुआ है। तो कहने का मकसद ये कि शैतान जो वही है उसके एंटी अपनी कोशिशें कर रहा होता है, और शैतान उन आयात को जो पढ़ी जाती हैं उनमें मुदाखलत करके डिफरेंट मैसेज सुनने वाले को समझाने की कोशिश करता है, या उसके माने बताने की कोशिश करता है। लेकिन फिर क्या होता है, फयनसखुल्लाहु मा युल्की शैतान, तो अल्लाह ताला उसको मिटा देता है जो शैतान डालता है, थुम्मा युहकिमुल्लाहु आयाती, फिर मुहकम कर देता है अल्लाह ताला अपनी आयतों को, बिल्कुल मजबूत कर देता है अल्लाह ताला ऐसी चीजें। देखें हम सूरह नजम आपके पास एज इट इज पहुंची जैसे अल्लाह ताला ने उतारी थी, तो अल्लाह ताला ने उस चीज को तो मिटा के रख दी, वो तो उनको ही सुनी सिर्फ, जो ऐसे दिलों वाले होते हैं, क्योंकि अगली आयत में ही आएगा, जो ऐसे दिलों वाले होते हैं उनको ये चीजें भी सुनती हैं जो इन्हीं चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं। तो अल्लाह ताला फिर इतनी वाजे आयात नाजिल कर देता है ना, जिससे शैतान की डाली में सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं। कुरान की जो असल में वो तो मुहकम आयात है ना, कुछ मुतशाबे भी हैं, जैसे सूरह आले इमरान में हमने पढ़ा था। अब शैतान को मौका मिल जाता है मुतशाबे आयात के में कुछ ऐसी बातें करके लोगों के दिलों में शकु को शुभार डालता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला मिटा देता है इन सारी चीजों को, और अल्लाह ताला मोहकम बात को रखता है। तो हर दौर में शैतानों की कोशिशें होती रही हैं कि अल्लाह ताला के दीन को मिटाने के लिए इसके अंदर डाउट्स डालना, इसके अंदर तरह तरह की गलत फहमियां पैदा करना, इसके अंदर ऐसी बातें लाना कि जिससे लोग कुछ का कुछ ही मतलब समझ लें और गुमराह हो जाए। तो ये काम करता रहा है शैतान, और आज तो नेट के जरिए तो ये काम बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके के साथ हो रहा है। आप देख लेना वो उसको, अब मैं तो उसको कुरान नहीं कहूंगी, लेकिन उसको कुरान का नाम देकर एक किताब भाई इंटरनेट पे, अब कुछ सूरतें कुरान की उसमें डाल दी और बाकी सारा अपना मवाद उसके अंदर शामिल कर दिया। तो ये तो कोशिशें शैतानी हो ही रही है ना, लेकिन अल्लाह ताला प्रिजर्व करता है। इसीलिए म्यूनिख के अंदर ना एक रिसर्च हुई थी, एक रिसर्च सेंटर था, उसमें उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि इनके जो इनका कुरान है कितना सही है। तो उन्होंने 42,000 नुस्खे पूरी दुनिया से जमा किए और उनको कंपेयर किया, एक एक चीज एक एक हर्फ को कंपेयर किया, तो उसमें जरा बराबर भी कहीं चेंज नहीं था, सब सेम थे। तो शैतान अपने कामों में लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला अपनी बात को महफूज रखने वाला है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला इल्म वाला हिकमत वाला, उसने जिम्मा ले लिया ना इस कुरान की हिफाजत का, तो इसकी तो हिफाजत अल्लाह ताला ने की है। और पहले वक्तों में भी जो रसूलों के ऊपर कलाम आए और शैतानों ने उसमें रखने डाले, मुदाखलत की, लेकिन अल्लाह ताला ने सही पैगाम ईमान वालों तक पहुंचा दिया। बाद में पैगंबरों के बाद जो चेंजेस आए वो अलग बात है, लेकिन उनकी जिंदगियों के अंदर पैगाम उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने सही फॉलो किया। मगर हाँ, ऐसे लोग होते जो शैतान के साथी होते, तो उनका क्या है, लिया जाला मा युल्क शैतान फितनत लिल्लदीन फी कुलूबिहिम मरद वलकासियत कुलूबुहुम। और लेकिन ये चीजें किसके लिए फितना बनती हैं, कौन से लोग हैं जो इन चीजों के पीछे जाते हैं, वो जिनके दिलों में मर्ज है यानी मुनाफिक, और वो जिनके दिल सख्त है यानी काफिर, वो इन चीजों से बड़े अट्रैक्ट होते हैं। देखो जी ऐसा कुरान आ गया, देखो जी इसके अंदर तो ये लिखा हुआ है, देखो जी ऐसे, उनको अपनी शैतानी बातें ही सूझती हैं। देखिए ना अल्लाह ताला ने फरमाया ना, युदिल्लु भी कथीरा वो यहदी भी कथीरा, इसी कुरान से बहुत से लोग हिदायत भी पा लेते हैं, बहुत से लोग गुमराह भी हो जाते हैं। अगर जमीन ही अपनी खराब हो तो उसके ऊपर फल फूल तो नहीं उगे, ये झाड़ झंकार ही उगेगी ना। आप एक बर्तन देख लें, वो खुद ही गंदा है, उस बर्तन के अंदर अगर आप प्योर दूध भी डाल दें तो वो भी खराब हो जाएगा। क्यों? बर्तन गंदा था। जिनके दिल ही गंदे हैं उनको यही चीजें पसंद आती हैं, वो कुरान के अंदर कोई ना कोई बातें खुद ही अपनी तरफ से शोशे निकाल रहे हैं। जिनके दिलों में बीमारी है वो ये इन इन कार्रवाइयों के पीछे जाते हैं जो शैतानी है, उनको अट्रैक्ट ही यही चीजें करती हैं। वरना अल्लाह का जो कुरान है सारा जो मोहकम है उसमें कुछ मसला नहीं, और कई लोग शैतान के एजेंट बन के ऐसे काम कर रहे हैं। वह इन्ना तौलिमीन लफी शकाकिम बईद, जो जालिम लोग हैं वो तो मुखालफत में हैं दूर की, मुखालफत में दूर निकल चुके हैं। ऐसे लोगों की हिदायत बड़ी मुश्किल है, ये सीधे रास्ते पे आए, ये जालिम है। और ऐसे लोग ना एक मिशन लेकर चलते हैं और वो लोगों को भी बहकाते हैं। इसलिए मैं बार बार इसलिए बात करती हूँ कि इंटरनेट पे चूंकि ये इतनी ज्यादा चीजें आजकल बहुत ही पॉपुलर हैं, और नौजवान चूंकि नेट पे बैठते हैं आज, वो हदीस पूरी हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा जमाना आएगा कि कोई सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा सुबह को काफिर होगा। इस तरह वाकई में लोग इन चीजों से मुतासिर होते हैं और अपना ईमान ही गंवा देते हैं, क्योंकि ऐसे शैतानी लोग ना, जो ये देखें यहाँ पे अल्लाह ताला ने बता दिया कि शैतान उनकी तमन्नाओं में और उनकी तिलावत के अंदर ऐसी चीजें डालता है। अल्लाह ताला ने तो क्लियर कर दिया सब कुछ, लेकिन वो लोग ना जिनके दिलों में फितना, वो फिर भी इन्हीं चीजों के पीछे भागते, उनको अट्रैक्ट करती हैं। तो अपना ईमान मजबूत करें, अपने दीन को खुद समझें, ताकि ऐसे लोगों का शिकार ना आप हो जाएं, जो जो खुद भटक गए शैतान के रास्ते पे चल गए, वो दूसरों को भी भटकाते हैं। लेकिन वो लोग जो ना, जो इल्म वाले होते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने किताब का इल्म दिया है, उनको पता है कि हक है उनके रब की तरफ से, वो नहीं इन बातों में आते। इससे पता चलता है कि जो इल्म है वो जरूरी है, तभी तो आप पहचान सकेंगे। फिर लोग कहते हैं अब तो ये क्या फर्ज है इल्म हासिल करना। भाई आप इल्म नहीं हासिल करेंगे तो फिर आप इनके ही रास्ते पर चल पड़ेंगे। ये बहुत आसानी से उनके पास ऐसी ऐसी बातें होती हैं, इस तरह के तरीके होते हैं, बड़े तरीके के साथ वो बंदे को ना अपनी लाइन पे ले आते हैं, उसको पता भी नहीं चलता। अब इल्म होता नहीं है, बिल्कुल ही समझ ही नहीं अपने दीन की, ना इस कुरान की बात की, तो वो भी फिर जाहिर है फिर फितने में पड़ जाते हैं। तो शैतान अपनी कार्रवाइयां जितनी भी करे, लेकिन जब वो इल्म वाले होंगे ना, वो यही कहते हैं, वो उनको पता है, वो जान जाते हैं, उनको समझ आ जाती है कि अन्नहुल हक में रब, कि ये है, ये हु की जमीर की तरफ जाए कुरान की तरफ, ये कुरान हक है मेरे रब की तरफ से। ये उनको फर्क नहीं पड़ता शैतान जितनी भी दखल अंदाजियां करे, इसमें अपनी चीजें डाले। फयुमिनु बिही फतुख़बित लहू कुलूबुहुम, फिर वो ईमान ले आए साथ इसके, फिर आजी करें इसके लिए उनके दिल, क्योंकि वो जो अहले इल्म है उनको समझ होती है, और वो ईमान ले आते हैं इसके ऊपर, वो आजी करते हैं, वो इसके आगे झुक जाते हैं, वो समय ना माता ना कहते हैं। और जिनके दिलों में बीमारी होती है वो ही भागते हैं उस तरफ, वो ये तो कहते हैं उनके दिल टेढ़े होते हैं, उनके दिलों में कजी आती है, इनके दिलों में नहीं आती। फर्क क्या है? ऊतुल इल्म, इल्म वाले हैं ये। तो इसकी हकीकत इल्म वाले ही समझ सकते हैं, और जितना भी आप ज्यादा इल्म में बढ़ते जाते हैं, तो सूरह आले इमरान में आया ना उन लोगों के बारे में जो रासिखुल इल्म है, जो इल्म में रसूख पा जाता है, उसमें पक्का हो जाता है। तो फिर वो कहता है मैं ईमान लेकर आया, वो जो भी अल्लाह ने नाजिल किया मैं उसके ऊपर ईमान लाया, और जो दूसरे हैं वो मुतशाबे आयत के पीछे ही पड़े रहते हैं। आज कितने लोग हैं देखें, वो कहाँ से कहाँ लोगों को तावीलें करते फिरते हैं, हमें पता है इसकी तावील क्या है, हमें पता है इसकी असल हकीकत क्या है, मुझे पता है इसका मतलब असल में तो ये है। पता नहीं कहाँ कहाँ से नए नए मतलब निकाल के, कुरान की आयतों में से ही नए नए मतलब निकाले हैं। शैतान उनको इस पे उकसाता है ना, ये शैतान के एजेंट है। आप देख लें जितने गुमराहकुन फिरके हैं, जितने सारे अपनी दलीलें कुरान से ही तो लाते हैं। देखिए कुरान में तो ये लिखा, ये हमारे इस अमल की दलील ये है, तो शैतान ने डाला हुआ है ना। लेकिन ऊतुल इल्म जो है ना वो संभल जाएंगे। वा इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला लहादिल्लदीन आमनु इला सिरात मुस्तकीम, वो खुद हिदायत देता है ईमान वालों को सीधे रास्ते की। इंसान का जब ईमान सच्चा होता है ना और मजबूत होता है, और ईमान भी मजबूत कैसे होता है? इल्म के साथ। जब ईमान मजबूत होगा तो अल्लाह ताला खुद राह दिखा देगा, खुद सुझा देगा, खुद गाइड कर देगा सिरात मुस्तकीम की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ, फिर इंसान भटकता नहीं है। और जब इल्म ही नहीं तो ईमान भी किस दर्जे का, ईमान भी डामाडोल है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, वो उसके बाद फिर शिकार हो जाते हैं ऐसी चीजों के। वला यजालुल्लदीना कफरू फी मिरयतिम मिन, और हमेशा रहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, फिर मिर्यात में इससे शक में ही रहेंगे, इनके दिलों के अंदर हमेशा ही शक रहेगा। देखें जो काफिर है ना, बात वही बात है ना, ईमान की बात है। अगर आप मान लेते हैं तो फिर कुरान के भी आपके ऊपर असरात कुछ और होते हैं, अगर नहीं मानते तो असरात कुछ और होते हैं। बात तो मान जाने की है ना, जब मान गए तो इस दुनिया के सबसे बुलंद तरीन हस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर आप सीरत भी पढ़ेंगे तो आपके ऊपर असर होगा, फिर उनके वाकयात भी सुनेंगे तो आपका ईमान ताजा होगा। लेकिन अगर उनकी जात में ही शकूक पड़ गए, उनके ऊपर ही आप फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, तो फिर तो कोई चीज भी नहीं, आप सीरत की किताबें कितनी मर्जी पढ़ लें कुछ भी नहीं असर होगा। इसी तरह कुरान है, आप कुरान को ईमान के साथ पढ़ते हैं ना, तो फिर आप तफसीरें जितनी भी पढ़ें आपका ईमान बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप ईमान के साथ नहीं पढ़ते, दिल में शक है, कोई दिल में बीमारी है, तो चाहे आप पूरी लाइब्रेरियां तफसीरों की पढ़ लें, जरा बराबर फायदा नहीं होगा। तो जिनके अंदर शक है तो इनका शक नहीं कभी खत्म होना, ये इसमें हमेशा रहेंगे। हत्ता यहां तक कि आ जाए उनके ऊपर कयामत की घड़ी, यहां आ जाए उनके ऊपर घड़ी या तो मौत की है, या फिर दूसरी आ जाए उनके ऊपर अजब यौमिन अकीम, उस दिन का अजाब जो अकीम है, जो बांझ है। और ये बाज ने सात का मतलब कयामत लिया और यौमिन अकीम का मतलब वो लिया, वो दिन जिस दिन कौमों पर अजाब आता है, या तो उनके ऊपर अजाब आ जाए या कयामत आ जाए। बाज ने कहा कि नहीं, ये सात का मतलब मौत है, कि अचानक मौत उनको आ जाए तो तब तक भी उनको यकीन नहीं आएगा, या फिर आ जाए जब तक के यौमिन अकीम से उन्होंने कयामत मतलब लिया। अकीम का मतलब बांझ, यानी जिसका अगला दिन ना हो, तो ज्यादा यही बात समझ आती है कि यानी अगला दिन नहीं है, यानी कयामत का ही दिन वो है जिसके बाद आगे कोई रात नहीं है, कोई और दिन नहीं है, बस वो स्टैंड अलोन ही है बस। तो ये कब तक शक में पड़े रहेंगे? जब तक मौत नहीं आ जाती इनको। मौत आ जाती है तो फिर वो तो हर एक बंदे की कयामत ही है, फिर तो अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि क्या सच था और क्या झूठ था। उससे पहले शक में हमेशा वो लोग ये इस तरह के शकूक व शुभात में ही पड़े रहेंगे। बाज लोगों को आप देख लेना, कितनी मर्जी उनको दलीलें दे दें, उनको समझ ही नहीं आती, शक में ही पड़े रहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई इसको बता के कि आप ना फिक्र करें। बाज लोगों को आप ये सोचते हैं क्यों नहीं मान ले आते, क्यों नहीं मान जाते, इन्होंने नहीं मानना ना, इनके दिल में शक का ऐसा जहर है। देखिए शक जहां पे भी पड़ जाए ना, उस चीज को खराब कर देता है। आप देखिए एक रिश्ते के अंदर अगर शक आ जाए, बीवी को शौहर पे अगर शक पड़ जाए कि ये मेरे साथ वफादार नहीं है, तो क्या रह जाता है उस रिश्ते का? ट्रस्ट खत्म हो जाता है, फिर वो रिश्ते के अंदर वो बात ही नहीं रहती। शक जिधर भी होगा ना, उसको खराब कर देगा। तो इस्लाम चाहता है कि ईमान वाला जो ना यकीन वाली जिंदगी गुजारे, शक वाली नहीं। शक वाला ईमान तो कबूल ही नहीं होना। अगर कोई ईमान वाला भी अपने आप को कहता ना, और उसके अंदर शक है, पता नहीं कयामत आनी भी है कि नहीं आनी, पता नहीं अब ये कुरान ये जो सच्चा भी है कि नहीं, पता नहीं अल्लाह की तरफ से उतरा भी था कि ऐसे ही तो नहीं बातें बना दी हुई, पता नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सुनाया था या कुछ और था, पता नहीं ये जो उनकी बातें बताते ये सही भी है या नहीं है। अगर ये शक आ गया, और ये शक दिल में जगह पैदा करता है, एक होता है वसवसे शैतान डालता है, और एक है उस शक को अपने अंदर मजबूत जड़ पकड़ लेना। अगर वो शक आपका बिलीफ बन जाता है, अगर आपको वो यानी एक इस तराब में रखता है कि आपको समझ नहीं आ रही, मतलब कंटिन्यूसली आप उसी के अंदर है, तो वो ईमान अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। ईमान वो होना चाहिए जो ठोस हो, जो इतना मजबूत हो जैसे पहाड़ मजबूत है, उसके ऊपर आंधियां चले, तूफान चले, कभी पहाड़ भी हिलते? कभी आपने सुना है पहाड़ कोई आंधी आई है तो पहाड़ गिर गया? नहीं गिरता ना, कि वो मजबूत है, उसकी जड़ें मजबूत है। इस तरह जिसके ईमान की जड़ें मजबूत होती, उसको ये बातें नहीं कोई इफेक्ट करती। मगर जो जिसकी जड़ें कमजोर हों, आप देखें दरख्तों को आंधी आती है उसकी, वो जड़ें जाहिर है उतनी मजबूत नहीं होती, गिर जाता है। इस तरह ऐसे लोग फिर उनके प्रोपोगंडा में आ जाते हैं, उन्होंने कह दिया कुछ ऐसी बात, कोई ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें लोग लेकर आते हैं, आप ने ऐसी शादी क्यों कर ली थी, ये क्यों कर दिया था, वो क्यों करते। तो ये शकुको शुबात में जो पड़े हुए हैं ना, नहीं हटना। तो ऐ नबी इसके ऊपर ना अपना दिल ना रंजीदा करें, इनके तो शक खत्म ही नहीं होने, इतना जहर होता है ये शक, ये तो इनको मौत आ जाएगी या क्यामत आ जाएगी, तब तक नहीं इनको खत्म होने। हाँ उस वक्त खत्म हो जाएंगे, ये साथ क्यामत भी आई ना तो सब समझ आ जाएगी, और मौत आ गई तब आ जाएगी, जो भी चीज पहले आ जाए। अल मुल्क यौमा दिन लिल्ला, और हुकूमत उस दिन अल्लाह ही के लिए है। किस दिन? जिसकी पीछे बात हुई यौम नकीम, कयामत के दिन। तो हुकूमत तो आज भी अल्लाह ही की है, कुदरत तो आज भी अल्लाह ही की है, उस दिन का क्या? ये तो हमेशा ही अल्लाह ताला की है। लेकिन असल में बात यह है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने थोड़ा सा इख्तियार इंसान को भी दिया। अब देखिए ना, जब हम कहते हैं मालिकी यौमिद्दीन, वो मालिक है बदले के दिन का, तो आप ये बताएं आज का भी तो वही मालिक है, दुनिया के दिनों का भी वही मालिक है, कयामत के दिन का भी मालिक, फिर क्यों कहा जाता है? तो ये सवाल जहन में आता है, तो फिर इसका जवाब ये है कि इसलिए कि दुनिया में एक छोटा सा लिमिटेड सा इख्तियार अल्लाह ताला ने इंसान को भी दिया, उसके जिस्म पे दे दिया, उसकी कुछ चीजों पे दे दिया। लेकिन इंसान जो है ना, वो ऐसा नादान है कि बस उस इतने से इख्तियार को उसने समझ लिया कि मैं ही मालिक बन बैठा हूं। किसी को घर पे इख्तियार दे दिया ना, तो वो समझ बैठा कि बस मैं ही मालिक हूं, मेरा इख्तियार है, मेरी जो मर्जी करूं। किसी को बीवी पे इख्तियार दे दिया तो वो सोचता है कि मेरा ही इख्तियार है, बस जो मैं अपनी बीवी को जो मर्जी करता रहूं, वो सब मेरी मर्जी है। किसी सबको जिस्म पे इख्तियार दिया, बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी मेरा जिस्म है मेरा इख्तियार है, हालांकि वो ये नहीं समझते कि ये इख्तियार तो अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत लिमिटेड सा दिया। इससे गलत फहमी में ना मुब्तिला हो जाना कि मैं जो मर्जी करूंगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि ये मेरा है, ये भी अल्लाह की अमानत है, ये तुम भूल गए। ये तो अल्लाह ताला ने अमानतन दिया हुआ ना ये इख्तियार तुम्हें, ये जितना भी दुनिया का इख्तियार है, चाहे वो दफ्तरों में है, चाहे वो घरों में है, चाहे वो कोई इंसान का इंसान के ऊपर है इख्तियार, किसी प्रॉपर्टी पे इख्तियार है, क्या चाहे किसी मुल्क पे इख्तियार है, जहां पे भी है, वो सारा का सारा तो अल्लाह ताला की अमानत था, आरजी तौर पे टेम्परेरी अल्लाह ताला ने दिया था, वो थोड़ी सी मुद्दत के लिए। देखे ना कितनी मुद्दत है इंसान की जिंदगी, उसमें भी थोड़ी देर के लिए उसको इख्तियार मिल जाता है, फिर उसके बाद उसे छिन जाता है। लेकिन वो पागल समझता है कि मैं तो बा इख्तियार हो गया, सारा इख्तियार मेरा ही है, मेरे जिस्म पे भी मेरा इख्तियार, घर पे भी मेरा इख्तियार, बच्चों पे भी मेरा इख्तियार, बीवी पे भी मेरा इख्तियार, सब मेरे ऑफिस में भी सब लोगों पे मेरा इख्तियार, मैं ही बा इख्तियार हूँ, वो तो पता नहीं खुदा ही बन बैठता है। तो कयामत का के दिन ना ये वाला इख्तियार भी, ये छोटा सा जो इख्तियार अल्लाह ताला ने इसको दिया ना, जिसकी वजह से ये इतना आपे से बाहर हुआ जा रहा है और पागल हो गया, मुझे नहीं पागल हाथी हो जाता, उसको कुछ समझ ही नहीं आती, रोनता फिरता। इंसान भी इसी तरह पागल हो जाता है जब उसको अथॉरिटी मिल जाती है, अक्सर इंसानों की, सारों सारे की बात नहीं, अक्सर इंसान ऐसे हो जाते, जब फिर उनको इख्तियार मिलता है तो वो भूल जाते हैं कि एक बा इख्तियार हस्ती है जिसने मुझे छोटा सा इख्तियार दिया, कयामत के दिन ये छोटा सा इख्तियार भी वो वापस ले लेगा, तो अब सारा का सारा इख्तियार अल्लाह ताला का होगा। इसीलिए अल्लाह ताला उस दिन फरमाएगा लीमन अल मुल्क अल यौम, आज के दिन बादशाहत किसकी है, फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अल्लाह ही के लिए है जो वाहिदुल कहार है। तो आज का भी वो ही बादशाह, कल का भी वो ही बादशाह, कभी गलत फहमी में ना रहो कि छोटे से इख्तियार को लेकर अपने आप को पता नहीं खुदा समझ बैठो। यहकुमु बैनहुम, वो फैसला करेगा उनके दरमियान। तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात बताई जा रही है? ये जो लोग शक में पड़े हुए हैं, जो लोगों को यकीन नहीं आ रहा, जो लोग इस कुरान के अंदर नित नई चीजें निकाल रहे हैं, शकुक व शुभात पैदा कर रहे हैं, और इसी के अंदर से ऐसी शैतानी शैतान अपनी रखने इसके अंदर डाल रहा है, वो लोगों को ऐसी चीजें सुझा रहा है इसमें, नुक्ते निकाल निकाल के, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो वो जो ईमान वाले हैं वो तो सिराते मुस्तकीम पे अल्लाह ताला उनको हिदायत देता है, उनके लिए तो ये कुरान क्या है कि इसके अजायबात कभी खत्म ही नहीं होते। अब हदीस में भी आता है ना कि इस कुरान के अजायब कभी खत्म नहीं होते, और इससे जो इंसान के दिल जो है ना, वाले इल्म का दिल, इससे कभी भी नहीं भरता। ये वो किताब है जिस जितनी पढ़ी जाए, जितनी पढ़ी जाए, हर दफा इसके अजायबात नए नए इंसान को मिलते हैं, हर दफा इसका लुत्फ अलग ही होता है, इसकी लज्जत अलग ही होती है। जितना भी पढ़ लो, दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसको बार बार पढ़ने से उसको और जितना ज्यादा पढ़े उसकी लज्जत बढ़ती ही जाए, ऐसी कोई किताब ही नहीं। तो अहले ईमान के लिए तो ये इसमें हिदायत है और अजायबात है, अहले कुफर के लिए इसमें शकूक है जो कभी भी नहीं खत्म होने। वो चाहे वो जब उनकी मौत ही आएगी तो तब भी उनके ये शक सामने, जब ये पर्दा उठ जाएगा तभी उनके शकूक खत्म होंगे। तो वो दिन जब आएगा उस दिन तो ये होगा कि अल्लाह ताला फैसला करेगा, और उस दिन हाकमियत उसी की होगी। फल्लदीना आमनू आमिलु सालिहाती फी जन्नातिन नाईम, उस दिन ईमान वाले और साले अमल वाले नियमतों वाली जन्नत के अंदर मजे कर रहे होंगे, और वो लोग जिन्होंने कफर हुआ कदबू भी आया थी ना, जिन्होंने कुफर किया हमारी आयात से, खुद भी इनकार किया और कदबू झुटलाया दूसरों को भी, कहा कि नहीं ये सही नहीं है, अज़ाबु मुहीन, उनके लिए रुसवा कुन अज़ाब है, रुसवाई वाला अज़ाब है कि उस दिन सबके सामने जो उनकी ह्यूमिलिएशन होगी, वो जो अज़ाब में जिसमें वो पड़े होंगे उनके लिए सख्त जिल्लत वाला होगा। वल्लदीना हाजरू फी सबीलिल्लाह, और वो लोग जिन्होंने हिजरत की अपने घरों से, अब वो वाली बात है कि उन लोगों की बात वो आ रही है जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां दी, और कुर्बानी देकर इस दीन को हासिल किया। उनमें सरे फहरिस्त वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की खातिर हिजरत की। देखिए हिजरतें तो बहुत सारी होती हैं, लोग मूव करते हैं, और जब से इंसान इस दुनिया पे है हमेशा से माइग्रेशंस तो होती रही हैं। लोग पानी के लिए माइग्रेट करा करते थे, लोग कहीं बेहतर वेदर के लिए माइग्रेट करते थे, आज भी दुनिया में माइग्रेशंस होती हैं, लोग नौकरियों के लिए, शादी के लिए, तालीम के लिए, इस तरह से हिजरत करते हैं। लेकिन एक हिजरत है जो फी सबीलिल्लाह है, और ये हिजरत डिफरेंट होती है। ये वो हिजरत होती है जिसमें इंसान अपना घर बार, माल, कारोबार सब छोड़ के, अपना वतन छोड़ के, सिर्फ अल्लाह के दीन की खातिर, कि जहां मैं रहता हूं वहां पे अल्लाह ताला के दीन के ऊपर मैं नहीं चल सकता, या मुझे नहीं चलने दिया जा रहा, वहां पे इस कदर परसिक्यूशन है, इतना टॉर्चर है, वहां पे मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह के दीन के ऊपर मैं रह सकूं, वो वहां से इंसान हिजरत करता है। ये हिजरत फी सबीलिल्लाह इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा अमल है, अल्लाह अकबर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरत से पहले जितने भी गुनाह किए हों किसी ने, हिजरत करने से इंसान के वो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं और बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो जाता है, एक हज्जे मबरूर से और एक हिजरत फी सबीलिल्लाह से। और एक और हदीस में है कि जो अपने घर से हिजरत करके निकला फिर वो गिर गया अपनी सवारी से, या और वो गिर गया और मर गया, या किसी सांप ने उसको डस लिया और वो मर गया, या किसी और सूरत में मर गया, तो वो अल्लाह के जिम्मे है कि उसको अजर दे अल्लाह ताला। इसलिए आगे आता है सुम्मा कुतिलू, फिर वो कत्ल कर दिया गया, मतलब निकला अपने घर से अल्लाह के रास्ते में, उसके भरोसे पे निकला और उसको कत्ल कर दिया गया, औ मातू, या वैसे ही मर गया जैसे मैंने आपको बताया सवारी से गिर के मर गया, या वैसे ही अपनी तबई मौत मर गया, या उसको किसी सांप ने डस लिया, या किसी सूरत में भी। तो फिर क्या है, अब बंदा सोचता है कि हाँ ये बेचारा, देखो इसने अपना घर बार भी छोड़ा तो देखो यहाँ पे आके मर गया, इससे तो बेहतर था अपने घर में ही रहता। और क्यों निकला अपने घर से, आए क्यों ऐसे, हम ये सोचते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वो जब इस मेरे रास्ते में निकल गया ना, तो चाहे उसने जाके वहां पे जिंदगी गुजारी ही नहीं, उसको मौत ही आ गई, वो निकल जब खड़ा हुआ ना, तो ला या रजूकन्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, तो अल्लाह ताला उसको देगा रिस्क, बहुत उम्दा रिस्क, बहुत अच्छा रिस्क। रिस्क तो इंसान को दुनिया में ये सारी चीजें जो उसको नेमते मिली हुई है ना, ये सारी रिस्क कहलाती हैं। ठीक है, जितनी भी आपको जिंदगी है, आपका इल्म है, आपकी घर बार है, आपकी औलाद है, ये सब रिस्क है। लेकिन एक आसन रिस्क है, रिस्क ऑन हसना जिसको कहा गया, वो सिर्फ जन्नत का रिस्क है। इसलिए कि दुनिया का जो भी रिस्क है ना, वो खत्म हो जाने वाला है, वो कितना भी अच्छा हो, मगर वो कफन में कोई जेब नहीं हुई लगी होती, आपने यही छोड़ के चले जाना। लेकिन आखरत में जो रिस्क अल्लाह ताला ता फरमाएगा, वो बेहतरीन रिस्क है, क्योंकि वो ना कभी खत्म होने वाला है, ना उसमें कभी कोई कमी बेशी होने वाली है, ना उसको कोई जवाल है। और वह इन्नल्लाह लहुव खैरुर रज़िकीन, और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन रिस्क देने वाला है, सबसे ज्यादा बेहतरीन रिस्क देने वाला वो है, इसलिए कि उसको देने में किसी ने कोई पूछना थोड़ी है, ना ही उसके कोई खजानों में कमी आ जानी कि उसको ये खौफ हो कि मैंने दे दिया तो मेरे कम ना हो जाए चीजें, तो उसको किसी की इजाजत की भी लेने की जरूरत नहीं, उसको कोई मसला भी नहीं है देने में, तो अल्लाह ताला बेहतरीन है राज़िक, रिस्क देने वाला। ला युदखिलन्नहुम मुदखलन यरदौनहु, वो अलबत्ता जरूर दाखिल करेगा उनको, किन को, इनको जिनने हिजरत की उसके रास्ते में, फिर कत्ल कर दिए या मर गए, और निकल तो गए थे ना अल्लाह के रास्ते में, फिर अल्लाह ताला उनको जरूर दाखिल करेगा एक ऐसी जगह पर जिसमें वो खुश हो जाएंगे, उनका दिल राजी हो जाएगा। अब देखिए ना सूरह निसा में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में निकलता है, फिर हिजरत करता है अल्लाह के रास्ते में, फिर उसकी मौत आ जाती है रास्ते में ही, तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे हो गया, ये वो अजर है जो अल्लाह ताला उसको देगा। वो जिंदा नहीं भी रहता, वो मर भी जाता है, उसकी हिजरत अभी मसलन रास्ते में ही, अभी कंप्लीट भी नहीं हुई, पहुंचा भी नहीं वहां, लेकिन अल्लाह ताला कैसे उसको नवाजता है कि वो लाजमन उसको दाखिल करेगा उस जगह पे, कि वो खुश हो जाएगा, उसका दिल खुश हो जाएगा, ऐसी नेमत होगी, ऐसी जगह होगी। और देखिए दुनिया में इंसान को समझ ही नहीं आती कि वो किस चीज से खुश होता है, उसका ख्याल होता है कि मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिल जाए ना तो मैं खुश हो जाऊंगा, कभी उसको लगता है पैसे मिल जाते हैं, फिर उसको लगता है कि नहीं पैसे तो मिल गए हैं, अब मेरे ये वहां वहां पे मेरे जहाज चलने लगे हैं और मेरे वहां वहां पे महल हों तो फिर मैं खुश हूंगा, वो भी मिल जाते हैं, तो अब इंसान कहता है नहीं मुझे बहुत ज्यादा शोहरत भी चाहिए, जब शोहरत मिल जाएगी ना तब मैं खुश हूंगा, किसी किसी चीज का कभी कहता है, कभी किसी चीज का कहता है, हर एक चीज को जब पा लेता है तो फिर उसको लगता है नहीं ये नहीं, इसकी कोई और चीज है जो जो मुझे खुश करेगी, यानी उसको समझ ही नहीं आती कि कौन सी चीज उसको खुश कर देने वाली है, क्या वजह है इसकी। ठीक है ना, आप मिसल किसी अब बच्चे को देख ले, पहले वो कहते हैं हम पास हो जाएं पास हो जाएं, बस वे खुशी की इंतहा नहीं रही, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद वो भी चीज कुछ ऐसी नहीं रही, बड़ी चीज नहीं रही, अब नौकरी मिल जाए, नौकरी नहीं मिल जाए तब मैं इतना खुश हूंगा, नौकरी भी मिल गई नहीं, अच्छा नहीं, नहीं अब मेरी शादी होगी ना तो मैं खुश हूंगा, शादी फलां के साथ हो जाए, फलां के साथ भी शादी हो गई, कौन सी चीज है जो आपको खुश करेगी, कहीं तो कोई लिमिट हो, कहीं कोई तो पता चले कि हाँ भाई ये चीज मिल गई, एक चीज मिलती तो दूसरी, दूसरी चीज मिलती तो तीसरी, क्यों ऐसे होता है, इसलिए कि ये जो खुशी को पा लेने की एक आरजू है ना उस इंसान के अंदर, ये कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती इन खुशियों के साथ जो ये दुनिया में है, उसकी सेटिस्फेक्शन सिर्फ उस खुशी के साथ होगी जिसके बाद कोई गम नहीं है, जिसके बाद कोई मसला नहीं है, और ये सिर्फ जन्नत हो सकती है और कोई जगह नहीं हो सकती, इंसान यहां तलाश करता है ना ऐसी जगह को कि जो मुझे खुश कर दे, बस मैं खुश हो जाऊं। लेकिन वही वो घर होते हैं, उन्हें ज्यादा थोड़े दिन रहने के बाद कोई भी नहीं खुशी हो रही थी, वो तो आम से ही घर लगने लगते हैं। इंसान मारा मारा फिरता है कि मैं वो चीज पा लूं जिस जो मुझे खुश करती है, वो कहीं पा ही नहीं है सकता। तो ये मादी दुनिया की जो लज्जतें हैं ना, ये इंसान की खुशी का बाइस बन ही नहीं सकती। टेम्परेरी छोटी सी देर की, थोड़ी सी देर की खुशी हो सकती है, पर दाइमी खुशी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला जिस जगह पे दाखिल करेगा वो उसको खुश कर देगा और हमेशा ही खुश रखेगी। यहाँ पर अगर ये सब लग्जरी जो हमारे इर्द गिर्द हैं जिनको पाने के लिए हम इतना भाग दौड़ करते हैं, अगर ये खुश करने वाली होती तो ये बड़े बड़े लोग जो नामी ग्रामी शोहरतों वाले और पैसों वाले, ये कभी खुदकुशियां ना करते। तो हमें पता चलता है कि जन्नत एक ऐसी जगह है जिसमें अल्लाह ताला उसको दाखिल करेगा, हमेशा के लिए उसका दिल खुश हो जाएगा। और देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे दिखाया गया था ना, हजरत उमर का घर, जन्नत का घर दिखाया गया था जो उनको मिलना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हूरें भी देखी थी वहां पे उनकी, तो फरमाया कि मैं वापस आए थे तो फरमाया कि मैं उमर की गैरत से डर गया, तो इसलिए मैं उसके घर में नहीं गया। हजरत उमर रोने लगे थे। तो ये ऐसे लोगों के लिए तो आगे बेहतरीन घर तैयार है। अब हम कहें देखें हिजरतें तो उन लोगों ने कर ली, हम क्या करें, हम तो ना हिजरत कर सकते हैं ना कुछ, और हमें हिजरत करने की अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत भी नहीं, इसलिए क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हम कोई ऐसी जगह पे नहीं रहते जहाँ पे हम दीन पे अमल ही ना कर सके, ऐसे हालात में नहीं रहते अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखिए हिजर का मतलब होता है छोड़ देना। चलो आप इनिशियल लेवल की हिजरत कर लें, ये घर छोड़ना तो बहुत बड़ी बात है ना। आप एक एक वो भी हिजरत है कि जो गुनाहों को छोड़ देना, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ देना, उनको छोड़ दें, ये वाली हिजरत कर दें। अगर ये हिजरत नहीं होती तो वतन छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो बहुत बड़ी बात है। वो क्या छोड़ेंगे अगर अल्लाह ताला की खातिर आप अपनी एक छोटी सी आदत नहीं छोड़ सकते, अगर अल्लाह ताला की खातिर आप एक अपनी छोटी सी मर्जी नहीं तोड़ सकते, तो ये हिजरत कर लें आप। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला इतना प्यारा मकाम देगा जिसमें वो खुश हो जाएंगे। वइन्नल्लाहलअलीमुन हलीम, और बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला भी है, हिल्म वाला भी है, उसको पता है कि किसको क्या चीज सेटिस्फाई करती है, इंसान का दिल कौन सी चीज खुश कर देती है। और वो हिल्म वाला भी है, वो इंसानों को जल्दी पकड़ता भी नहीं है, इंसानों की नाफरमानी के बावजूद वो उनको मोहलत दिए रखता है, ये उसका हिल्म है। बर्दाश्त, बर्दाश्त जिसको कहते हैं ना, हम तो ये जरा सी बात होती तो हम इतना गुस्सा करके फौरन यानी आपे से बाहर हो जाते हैं, कुछ बोलने लगते हैं, ये हिल्म के खिलाफ है। अल्लाह ताला की सिफाती नामों में से एक हलीम भी है, और ये बहुत ही प्यारा नाम है, इसलिए कि उसका हिल्म ना हो तो हम तो जमीन पे चल ही ना सके। ये उसकी बर्दाश्त है ना कि वो सुनता है, देखता है, कुदरत भी रखता है पकड़ने की और हमें सफाई हस्ती से मिटा देने की, फिर भी उसका हिल्म है। कुर्बान जाए ऐसे रब पे कि वो फिर भी सजा नहीं देता, फिर भी फौरन हमारे पर गुस्सा नहीं कर देता, फिर भी फौरन हमें दुनिया से मिटा देना तो क्या, यानी हमें हर चीज से महरूम नहीं कर देता, ये उसका हिल्म है। तो हम अल्लाह ताला की सिफात, बहुत खूबसूरत सिफात हैं, उनमें से जो ये हिल्म की सिफत है ये अपने अंदर भी पैदा करने की कोशिश करें। ये हम फौरन फौरन ना गुस्सा कर लिया करें, फौरन फौरन ना एकदम वावेला करना शुरू कर दिया करें, फौरन फौरन ना बद्दुआएं देना शुरू कर दिया करें, फौरन ना झगड़ना शुरू कर दिया करें, बल्कि हिल्म के साथ रहें। अल्लाह ताला ये हमें ये खूबी जो तेरा ही कमाल है और जो तेरे पास है, अल्लाह ताला ये हमें भी अता फरमा दे। ज़ालिका, ये बात यानी ये जो पहले सारी बातें गुजर गई ना, ये तो सारी बातें ठीक है, ये तो आखरत की बातें हैं, ये तो ठीक है सारी बातें, ये तो सब हक है। वह मन आकब मिथली मा उकबा भी, और जो कोई बदला ले, माने जिसके जो सजा दी गई, बदला दिया गया उसको। असल में यहाँ पे आकब का लफ्ज को आप समझ लें, यहाँ पे दो जगह इसलिए आया कि जैसे आता है ना, वह मकर हुआ, मकर अल्लाह, उन्होंने मकर किया, अल्लाह ने भी मकर किया। अल्लाह ताला तो मकर नहीं करता, लेकिन उस वर्ड के सिमिलर वर्ड लाके बताया जाता कि उसकी जैसे ही एक चीज, एक लफ्ज को लाया जाता। इसी तरह यहाँ पर, और जो बदला ले माने उसके जो बदला दिया गया उसको, यानी जो उसके साथ ज्यादती की गई, जो उसके साथ किया गया ना, उसकी मिसल बदला ले ले। यानी एक बंदा है, उसके ऊपर किसी ने जुल्म किया, अब वो क्या करे, बिमिथली मा उकिबा बिही, उसके मिसल जो उसको दिया गया उसके मिसल ही वो बदला ले। शर्त क्या है, उसके मिसल होना चाहिए जो उसके साथ हुआ। तुम बुग या आलई, फिर ज्यादती की गई उस पर। अब इसने तो बेचारे ने उतना ही बदला लिया था, लेकिन इसके ऊपर फिर ज्यादती की गई। अब इसकी मिसाल मसल मैं आपको देती हूं, उससे आपको शायद ज्यादा समझ आएगी, क्योंकि आप वो ये ना हो कि उसमें प्रोनाउंस के अंदर ही आप कंफ्यूज हो जाए। एक तो पहली बात ये है कि यहाँ पे ये मतलब नहीं कि जैसा बिल्कुल जुल्म किया गया है एग्जैक्टली वही चीज की जाए। जैसे मिसाल के तौर पे किसी के बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया, तो वो भी उसके बेटे को जाके कत्ल कर दे, कातिल के बेटे को नहीं, ये नहीं, बल्कि उसी इंटेंसिटी या ग्रेविटी, इतनी शिद्दत का वो उससे बदला ले सकता है। मसलन किसी ने थप्पड़ मारा तो उसको थप्पड़ मार दिया, किसी ने किसी का दांत तोड़ा तो दांत के बदले उसने उसका दांत तोड़ा। ये कफारा जो है, कसास जो है, ठीक है, मगर उतना होना चाहिए। यानी कि एक ने एक थप्पड़ मारा तो उसने उसको पूरा ही मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। और यहां पर आकर अक्सर लोग जो होते हैं वो जज्बात में आके जितना बदला लेना हो उससे ज्यादा ही कर देते हैं। कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, यानी तुमने मुझे ईंट मारी तो मैं पत्थर से तुम्हारा मुकाबला करूंगी। एक का जवाब दो से देते हैं, कहते हैं इसको पता तो चले, मैं इसको समझा के आऊंगी। और किसी हमारे यहाँ चूंकि जहालत बहुत ज्यादा है, तो किसी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा वो डॉक्टर थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि एक ने दूसरे के एक को मारा, फिर उसने उसके दो को मार दिया, फिर वो गए उनके चार को मारा है, फिर वो उठे और उनके उनको कह रहे हैं जमाने से उनकी ये दुश्मनियां घरानों में चल रही हैं। और आप इतनी न्यूज भी इस पे सुनते होंगे कि उसने उसके इतने मार दिए, एक खानदान के इतने लोग मार दिए, पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। ये चीज तो इस्लाम में है ही नहीं, बल्कि जितना तुम्हारे ऊपर किया गया उतना बदला लेने की तुम्हें इजाजत है। आगे आ रहा है माफ करने का भी बात आ रही है, लेकिन पहले इस बात को समझ लें कि उतनी इजाजत है ये इस्लाम ने दी है। ऐसा नहीं कहा कि ये एक ने एक थप्पड़ मारा तो तुम दूसरा गाल भी आगे कर लो, लो जी दूसरे पे भी थप्पड़ मार दो, नहीं, तुम उतनी की उससे बदला ले सकते हैं। मगर देखिए ऐसे जुल्म के कामों में नहीं कि आप ये कहें किसी ने मेरे साथ फ्रॉड किया मैं भी इसके साथ फ्रॉड करूं, उसने मेरे साथ झूठ बोला मैं भी उसके साथ झूठ बोलूं, ये नहीं। मैंने आपको बताया कि शिद्दत उतनी होनी चाहिए, मगर ये नहीं कि एग्जैक्ट सेम कि वो जुल्म करे तो आप भी जुल्म शुरू कर दें, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात समझ। दूसरी यहां पे बात ये कही जा रही है कि जब बदला लेगा वो, फिर उसके बाद तुम्मा भूख या आलाई, फिर ज्यादती की गई उस पे। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने किसी के ऊपर जुल्म किया, वो बंदा अदालत में जाता है और कहता है मेरे जुल्म का बदला दिलाया जाए। इस बंदे को जब सजा हुई तो इसके घर वालों ने, मुजरिम के घर वालों ने इसको और मारा और इसके ऊपर इतनी और ज्यादती की, जो बेचारा मजलूम था। अब तुम्मा भूख या आलाई, यानी अब इसके ऊपर ज्यादती की, बजाय इसके कि इसके इसको इसका बदला दिया जाता, उसके बाद इसके ऊपर ज्यादती हो रही है। अब एक औरत है मिसाल के तौर पे, वो उसके ऊपर उसके शौहर ने जुल्म किया, वो 7 तलाक लेने चली गई। जब वो तलाक लेने के लिए गई तो अब क्या उसके ऊपर ज्यादती की गई, कि अब उसके ऊपर बोहतान लगा दिया गया कि इसका तो किसी और के साथ कोई ताल्लुक था, अब ये ज्यादती है। अलबत्ता जरूर मदद करेगा उसकी अल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे मजलूम की मदद करेगा, क्योंकि एक तो उसके ऊपर जुल्म हुआ, अगर ये अपनी फरियाद लेकर गया बदला लेना चाहता है तो इसके ऊपर ज्यादती हो रही। और अक्सर ऐसे होता है, कहते हैं अगर तुमने अदालत गए ना या पुलिस में गए तो फिर देखना हम तुम्हारे साथ क्या करते। वो अगर पुलिस में चला गया, उसने अपने बदले के लिए बेचारे ने कहीं जाके कहीं दरखास्त दे दी, कहीं अपनी सुनवाई करवा दी, तो उसके घर आके वो काम करते हैं कि फिर पहले से भी ज्यादा बढ़ के। तो अल्लाह ताला ऐसे मजलूम के साथ है, इन अल्लाह अलाफुवुन गफूर, बेशक अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला, माफ करने वाला। अब इसके अंदर एक माफी की तरगीब भी दी गई है कि अगर किसी ने जुल्म किया है और उसका बदला नहीं लेते और उसको माफ कर देते हो, तो ये ज्यादा हिम्मत वाले कामों में से है और ज्यादा बड़ा काम है, ज्यादा बेहतर है। दूसरा इसका मतलब ये है कि बदला लेने की जो अल्लाह ताला ने ये लिमिट कर दी है, तो ये भी उसकी बख्शिश है। और चाहता तो अल्लाह ताला ये कहता कि आप बदला ही नहीं ले सकते। अच्छा, अब जो मजलूम मुसलमान हैं, जिनको घरों से निकाला गया, जिनके ऊपर जुल्म किया गया, जिनके ऊपर इतना कुछ उन्होंने सहा, अब देखें उनकी उनके कॉन्टेक्स्ट में इन आयतों को समझे तो आपको फिर ज्यादा समझ आएगी कि आगे क्या बात होने लगी है। कि यानी तुमसे ज्यादती हुई है, तुम्हारे ऊपर जुल्म किया गया है, और जुल्म के बाद और भी ज्यादतियां की जा रही हैं। अब देखो, अभी वो हिजरत करके चले गए, तब भी नहीं उनकी जान छोड़ है, तब भी वहां आके उनको सता रहे हैं, तब भी उनके लिए जिंदगी मुश्किल की है। जो हिजरत हबशा करके गए, पहले तुम उनके ऊपर यहां जुल्म कर रहे थे, वहां भी पीछे पहुंच गए और कह रहे हो कि अब इनको हमारे हवाले कर दो, मतलब तो किसी तरह उनको जीने नहीं दे रहे। तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी मदद कर सकता है, अल्लाह तुम्हारे साथ है। और ये तो सोचो ना, अल्लाह की कुदरत को तो सोचो कि अल्लाह ताला तो वो है। अब इसको आगे आप कंटिन्यू करें तब आपको बात समझ आएगी कि आगे की बात क्यों आ रही है, कि यूलिजु लैला फिन नहार और यूलिजु नहारा फिन लैल, ये क्यों आ रहा है। देखिए आगे समझे, ज़ालिका भी अन्न अल्लाह यूलिजु लैला फिन नहारी व यूलिजु नहारा फिन लैल। ये बात इसलिए आपको समझ है कि बेवजह इसके कि बेशक अल्लाह तो वो है जो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल कर लेता है, वो तुम्हारी सुनवाई क्यों नहीं कर सकता, वो तुम्हें क्यों नहीं इससे निकाल सकता। वो निकाल सकता है, वो इसकी कुदरत रखता है। तुम भरोसा करो, तुम्हारा रब तो वो है। अगर इन्होंने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया तो अल्लाह जालिम को जाने नहीं देगा, तुम्हारे साथ है अल्लाह ताला खड़ा। अल्लाह तुम्हारी मदद कर सकता है क्योंकि वो रब जो इतना बड़ा निजाम चला सकता है कि रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल कर सकता है, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और इसमें बड़ी हिकमत है। एक बात ये भी है, नंबर वन, कि जैसे दिन रात बदलते हैं ना, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, इस तरह तुम्हारी सिचुएशन भी बदल जाएगी। देखो ना, अगर आज रात है तो कल दिन भी तो होगा, और जिनका आज दिन चल रहा है तो उनकी रात भी तो होगी। तिलकल अय्यामु नुदाविल हुआ बैन नास, ये दिन है, अल्लाह ताला फिरता रहता है इनको लोगों के दरमियान। नंबर टू बात कि देखो रात और दिन कैसे बदलते हैं, कभी एक लंबा, कभी रातें लंबी दिन छोटे, कभी दिन लंबे रातें छोटी। तो किसी की आज अगर कुव्वत ज्यादा है तो कल को वो बदल के कमजोरी में बदल जाएगी, किसी की आज कमजोरी है तो कल अल्लाह उसको कुव्वत दे देगा ना। आज उसकी लंबा उसका दिन चल रहा है तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसकी रात होगी। और फिर अल्लाह ताला ये सारा निजाम कितना ग्रेजुअली, कितने गैर महसूस तरीके से अल्लाह ताला लेकर आता है कि पता भी नहीं चलता। देखिए हम दिन चल रहा होता है, ऐसा नहीं होता स्विच ऑफ हो जाए और रात हो जाए, और स्विच ऑन हो जाए और दिन हो जाए, इतने ग्रेजुअल होता है ना। तो अल्लाह ताला भी ऐसे ग्रेजुअली इनको पकड़ेगा कि पता भी नहीं चलेगा, ऐसे हालात पैदा कर देगा। और वाकई देखिए हम जब पूरा सीरत पढ़ते हैं तो एक वो वक्त आप पढ़ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये मुसलमान कभी पावर में आ सकते, लेकिन ग्रेजुअली कैसे 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 चलते 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 हालात कैसे बन गए कि वो ही काफिर जो एक दिन इतना उनका गरूर और तकबर था, दनदनाते फिरते थे, वो ही कैसे मغلوب हो गए, बगैर लड़ाई हथियार उन्होंने डाल दिए और मक्का फतह हो गया। तो इतने गहरे अंधेरे से कैसे ग्रेजुअली वो दिन को निकाल लेता है पता भी नहीं चलता, कैसे तुम्हें फतह दे देगा अल्लाह ताला तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये हुआ, और ये आप पढ़ के देखें तो पता चलता है कि वाकई ऐसा है। लेकिन जब इंसान के ऊपर वो टर्मोइल का वक्त गुजर रहा होता है ना, तो उसको लगता है कि ये कभी भी दिन नहीं चेंज होने, ये कभी भी नहीं मेरे हालात बदलने। कैसे नहीं बदलेंगे, वो अल्लाह तो वो है जो रात को दिन और दिन को रात में बदल देता है, तुम्हारे हालात नहीं बदल सकते। तुम फिर क्यों अल्लाह पे भरोसा नहीं करते? ये हम सब के लिए है, हम सब हालात के प्रेशर में इतने आ जाते हैं ना, वो जिस सिचुएशन में हम जिस वक्त होते हैं ना, उसमें हम बिल्कुल गर्क हो जाते हैं, वो फिर हमें ये सारी चीजें भूल जाती हैं कि हमारा रब कितना ताकतवर है। वो अल्लाह समीउ बसीर, और अल्लाह ताला सुनने वाला देखने वाला। सुनने वाला पहले बात आई इसलिए कि लैल की बात पहले आई, लैल में रात में अंधेरा होता है, सिर्फ सुना ही जा सकता है और दिन में देखा भी जा सकता है। तो अल्लाह ताला तो सुनने वाला भी है देखने वाला भी है। और दूसरा, दूसरी क्या बात का भरोसा रखो, तुम्हारा रब तो वो है कि दालिका भी अन्नल्लाह हुवल हक, तुमको अल्लाह मदद जरूर देगा, क्योंकि तुम्हारा रब, तुम्हारा अल्लाह ही हुवल हक है, वो ही हक है, वही सच है। वह अन्नमा यदाउन मिन दूनी ही हुवल बातिल, और वो जिनकी ये पूजा करते हैं वो तो बातिल है, फिर अल्लाह तुम्हारा साथ क्यों ना देगा। वह अन्नल्लाह हुवल अलीयुल कबीर, और अल्लाह ताला अली है, अली उलुव से है, जिसको कहते हैं ना एलिवेशन, बहुत बुलंद, सुप्रीम, हर बात से ऊपर, और कबीर बहुत बड़ा। जब अकबर होता है ना तो वो कंपैरिजन के लिए होता है कि इससे बड़ा या इससे, लेकिन जब कबीर है तो बहुत बड़ा। तो बाकी सब क्या रहेगा, छोटे नीचे, सब उससे नीचे हैं और सब उससे छोटे हैं, वो कबीर है। और जिस जिनको वो पुकारते हैं वो तो फॉल्सहुड है, सिर्फ कुछ भी नहीं है, और अल्लाह हक है, फिर तुम्हारे लिए मदद क्यों ना आएगी। और हुआ 3 दफा आया है ये ताकीद के लिए कि वो ही तो है, वो ही तो है, वो ही हक है, और जिनको ये पुकारते हैं वो बातिल ही हैं, और अल्लाह वो ही तो है जो बुलंद है और बहुत बड़ा है। ये आयात बहुत तसल्ली के लिए है। इंसान जो कोई भी किसी ऐसी सिचुएशन में घिरा हुआ हो जिससे उसको लगता हो कि अब निकलना मेरे लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो इन आयात को देखे और इनसे तसल्ली ले अपने लिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, और अल्लाह ताला इन आयात से हमें फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए और अमल में हमारे लेकर आए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير